करना नहीं पड़ेगा। केवल आने से उल्बणम और व्यसनम भवाप्ति, ये दुख कहाँ है? इस भव समुद्र में, संसार भव कहते हैं, जहां जन्म मृत्यु का क्रम लगा हुआ है, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, यह जहां लगा हुआ है भव है। और इस भव को आप अवधिम कहा गया, अवधि माने समुद्र, अथाह भव समुद्र है, इसमें दुख है। इस समुद्र में विविध प्रकार के मगरमच्छ पड़े हुए हैं दुख देने वाले, इसको पार करना बहुत कठिन है। ऐसे भी बहुत कठिन है समुद्र को पार करना, और उसके अंदर जलचर भयंकर जीव है, छह प्रकार के जो दुख है विविध प्रकार के, तो इन दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, आसानी से प्राप्त हो जाएगा, अनुभव ही नहीं होगा। कह रहे हैं कि क्योंकि भगवत गुण कथा में तो पान मत तह, क्योंकि जब मैं ऐसे भक्तों का संग करूंगा तो इनके बीच में आपके गुण कथा रूप अमृत का पान करके इतना निमग्न रहूंगा, मत रहूंगा, कि इसका बोध ही नहीं होगा। अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, इस साधु संग से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। साधु संग में महत्पुरुषों के संग चाहते हैं ध्रुव महाराज, अमला सह भक्तों का संग चाहते हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार की कामना नहीं है, क्योंकि साधु संग के बिना भक्ति के रस का स्वादन नहीं हो सकता। भक्ति के रस का स्वादन करने के लिए साधु संग चाहते हैं। साधु जन निरंतर कृष्ण के गुणों का वहन करते हैं, बोलते रहते हैं, गाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, आसक्त रहते हैं, तो कृष्ण के गुण कथन में आसक्त हैं। इनके संग करने से भगवान की कथा स्वाभाविक रूप से मिलती है, और उस कथा के पान में निमग्न होने पर संसार का दुख अपने आप समाप्त हो जाता है, अनुभव ही नहीं होता है। तो परंतु साधु संग से भगवत कथा अमृत का अवसर मिलता है, और भगवत कथा अमृत से संसार ज्वाला शांत हो जाती है। तो ऐसा चीज मांग रहे हैं कि एक साथ ही सब कुछ हो जाए। हम सुने हैं महाराज श्री कई बार कहे हैं कि एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था, उसके संतान नहीं हो रहे थे, तो भगवान का भजन किया, चलाक ब्राह्मण था, भजन करके जब भगवान प्रसन्न हो गए, कहे क्या चाहिए बोलो, तो कहा क्या मांगे, अगर पुत्र मांग लेते हैं तो इसे तो समस्या सोल्व होने वाली नहीं है, फिर धन चाहिए, और मान लीजिए पुत्र मांगे और पुत्र भी इसी तरह निपुत्री हो जाए, एक समस्या हो सकता है। तो कहा कि मैं अपने पौत्र को सोने के थाली में दूध भात खाते हुए देखूं। तो ऐसा मांगा कि पुत्र होगा तभी पौत्र होगा, धन रहेगा तभी सोने के थाली मिलेगी। तो एक बार में ही पुत्र पौत्र और धन सब मांग लिया, मांगा एक लाइन में, एक पंक्ति में, लेकिन सब मांग लिया। तो ध्रुव महाराज महत्पुरुषों के संग चाहते हैं, और अनुभव बतला रहे हैं कि ऐसे भक्तों के संग से सारा दुख समाप्त हो जाएगा। स्वयं का उनको प्रैक्टिकल अनुभव भी है कि चले थे घर से राग द्वेष में भगवान का भजन करने, लेकिन काम बहुत अच्छा करने के लिए निकल गए, अपने भाई उत्तम से ईर्ष्या में चले कि मैं भी उससे उत्कृष्ट पद चाहूं, लेकिन रास्ते में देवर्षि नारद मिले और उनके कृपा से भगवान मिल गए, और भगवान मिल गए तो अब कुछ भी पाना बाकी नहीं रह गया, हो गया, तो जान गए कि एक वास्तविकता कहाँ है। देवर्षि नारद जैसे अमला सयानम भक्तों के संग से सब प्राप्त हो सकता है। तो अब उसी को मांग लेते हैं कि हे प्रभु, आप ऐसे ही भक्तों का संग दीजिए, क्योंकि वे जहां चलते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मंदिर में भजन करेंगे, देवर्षि नारद रास्ते में मिल गए लेकिन भक्ति को ढोते चलते हैं, रास्ते में मिल गए। भक्ति मुह प्रवहता, भक्ति को ढोकर लेकर चलते हैं, रास्ते में मिले और दो चार वाक्य में इनको भक्ति दे दिए। अब नहीं मानोगे तो मधुबन चले जाओ, छोटे से बालक को कहते हैं 3 बार स्नान करना जमुना जी में और 1 मंत्र जप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वह बालक ध्रुव प्रहल उनके देवर्षि नारद के उपदेश का अमल किए और 6 महीना के अंदर ही भगवान को प्राप्त कर गए। तो उनको पता चल गया था कि सबसे बड़ा सोर्स है सुख के, सबसे बड़ा सोर्स है महत्पुरुष। तो इस प्रकार महत्पुरुषों का संग प्राप्त करना चाहिए। ऐसे भक्तों के संग से संसार के दुख की अनुभूति नहीं होगी। दुख तो रहेगा इस संसार में, दुख से ही संसार बना है, अशाश्वतम दुखालयम, लेकिन दुख का अनुभव नहीं होगा क्योंकि भगवत सुख का स्वादन होने लगेगा। मुझे याद नहीं है पूरा बंगला का पंक्ति, लेकिन कलकत्ता में कपड़ा के दुकान में एक बार मैं देखा था, उसका भाव याद है कि नौका पानी में रहता ही है ये स्वाभाविक है, लेकिन नौका के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, डूब जाएगी। उसी प्रकार साधक इस संसार में रहे, दुखमय संसार में स्वाभाविक है, लेकिन साधक के अंदर संसार नहीं होना चाहिए। तो महत्पुरुषों के संग में जो अंदर संसार की बात है वो समाप्त हो जाती है। संसार का दुख तो अपने अंदर रहेगा, दुख से बना ही है, बनाने वाला ही कह रहा है कि अशाश्वतम दुखालयम, ये दुख से भरा हुआ है, टेम्पररी है। तो ये यहाँ का दुख नहीं समाप्त किया जाएगा, दुख की अनुभूति समाप्त हो जाएगी भक्तों के संग से। तो इसलिए भक्तों का संग प्राप्त करना चाहिए। ये तो कल के कथा प्रसंग में एक श्लोक कहने के लिए महाराज कहे तो कह दिया संक्षेप में। अब आज आप लोग ताल वन होकर आए हैं, वहां की कथा में भागवत से एक एक श्लोक कोशिश करता हूँ आधा घंटा में पूरा हो जाए। श्री भगवान वत्सचारण के बाद गोचारण के लिए इसी कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन प्रारंभ किए नंदगांव से, जिसको गोपाष्टमी कहते हैं। ये अध्याय यहीं से प्रारंभ होता है। तो एक बार मैं इसी एक दो अध्याय पर ही मायापुर में 7 दिन कथा किया था। बहुत महत्वपूर्ण टीकाएं हैं इन श्लोकों पर, लेकिन मैं केवल तालबन की कथा को यहाँ कहूँगा। तो उसी क्रम में 10वें स्कंद के 15वें अध्याय में भगवान के गोचारण लीला का वर्णन है। भगवान गाय चराने के लिए नंद बाबा से अनुमति प्राप्त किए और अपने सखाओं के साथ वृंदावन में आए। बहुत दिनों की लालसा थी कि पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में घूम घूम कर ब्रज के सुख का स्वादन किया जाए। वत्स चारण में भगवान का एक सीमा बना हुआ था और नंद भवन से ही जसोदा जी देख लेती थी कि कहाँ है लाला, नंद बाबा भी देख लेते थे, क्योंकि एक सीमा बनाया गया था कि उसके आगे नहीं जाना है अंदर। और उनको डरवाने के लिए पत्थर का हाउ भी बना दिया गया था, उधर जाओगे तो खा जाएगा, तो उसके अंदर रहते थे। और सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद निकलते थे 9-10 बजे, कुछ खा पी कर खूब बढ़िया से भेजती थी और कुछ सीमा तक बछड़ों को चरा कर आना होता, और दोपहर में लंच के समय आ जाते थे। ज्यादा समय नहीं, केवल उनके मनोरंजन के लिए 2-3 घंटा खेलने के लिए जाते थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि पूरे ब्रजमंडल में घूमूं, भांडीरपट में जाकर खेलूं, मधुबन में जाऊं, गिरिराज जी में जाऊं। वो सुनते थे गोपों के द्वारा जो गाय चरा कर जाते थे, वो बताते थे, अनेक रसिक भक्तों ने बहुत कुछ लिखा है कि भगवान रोज माँ जसोदा से कहते थे, मैया बाबा से कह दो मैं गाय चराने जाऊंगा, मैं सयाना हो गया, मैं अभी छोटा नहीं हूँ, छठवां वर्ष में प्रवेश किए बस सयाना हो गए। तो कहने लगे कि मुझे गाय चराने को अनुमति दिला दो मैया, मैं गाय चराने जाऊंगी। तो माँ कहती थी गाय चराने की क्या जरूरत है, बहुत चरवाहे हैं, क्यों जाओगे। माँ डराती थी कि देखो बेटा गाय सूर्योदय से पहले निकलती है और सूर्यास्त के समय आती है, दिन भर वन में रहना पड़ता है और तुम दिन भर में 50 बार खाने के लिए मांगते हो, वहां कौन देगा। और वन में कटीले भूमि है, वहां बहुत बड़े भयंकर जीव जंतु हैं, बाघ सिंह हैं, खूब डराती थी। तो कहते थे मैया मैं वृंदावन में जाकर वहां का फल खाऊंगा वृक्षों से। तो कहती नहीं, वृंदावन का जो फल तुमको चाहिए मैं यही मंगा दूंगी। कहते नहीं नहीं, वो सब बासी होता है, अपने हाथ से तोड़कर खाऊंगा। तब कहती नहीं बेटा, तू पेड़ पर चढ़ोगे तो गिर जाओगे। कहते नहीं मैया मैं चढ़ूंगा नहीं, मैं दाऊ के साथ रहूंगा और गोप सखाओं को चढ़ाकर दाऊ तुलवा कर देंगे, ताजा खाऊंगा, नहीं चढ़ूंगा। तो तू जमुना में बहुत भयंकर नदियां हैं, जमुना में डूब जाओगे। तो नहीं, जमुना में नहाऊंगा ही नहीं, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ नहीं नहाऊंगा। इस तरह से भगवान बहुत आग्रह करते थे। बहुत आग्रह के बाद सूरदास जी ने तो सैकड़ों पदों में भगवान के गाय चराने की आग्रह को लिखे हैं। केवल एक विषय के आग्रह कैसे करते थे, अनेक विषयों पर लिखे हैं, लेकिन इस पर बहुत से पद लिखे हैं। तो सब कुछ कह देती थी, ये सब हो जाएगा, वहां हो जाएगा, लेकिन कहते मैया तू सब मंगा दोगी लेकिन भांडीर बट कैसे नंदगांव में मंगाओगी। भांडीर बट में मैं जाऊंगा, मैं सुनता हूँ कि वहां ऐसा बट है कि जो जमुना के इस पार से उस पार तक डालियां हैं, उस पर मैं चढ़ूंगा तो तू कूद जाएगा जमुना में। नहीं मैया मैं नहीं कूदूंगा, दाऊ हमारे साथ है। तो बहुत बार दाऊ जी भी कहते थे कि ठीक है मैया छोड़ दे, मैं साथ रहूंगा देखूंगा। तो भगवान तो जैन के न प्रकार मैया को मना लिए। बाबा को मनाना बहुत कठिन था, लेकिन माँ को मनाना बच्चों के लिए आसान है, और माँ मान गई तो बाबा को मनाएगी। तो किसी तरह से अनुमति प्राप्त कर लिए और वृंदावन में आए। तो वृंदावन में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि वृंदावन में जब श्री कृष्ण बलराम अपने गोप सखाओं के साथ प्रथम बार आए इधर, तो वृंदावन को बहुत स्वागत किया। वृंदावन स्वागत करने का मतलब इस ब्रजभूमि के अंदर वृंदावन में रहने वाले जितने जीव हैं सब स्वागत किए। मयूर, मृग, हरिण सब स्वागत किए, यहाँ तक कि वृक्ष, बहुत बड़े बड़े वृक्ष झुक झुक कर प्रणाम करते थे, अपने ऊपर के पुष्प को उनके चरणों में देते थे, फल से लदे हुए बड़े बड़े वृक्ष झुक जाते थे। बहुत सुंदर वर्णन है। तो भगवान वृंदावन में आए, यहाँ प्रचुर घास है, घेर कर गायों को नहीं चराना है, छोड़ दिए, गाय चर रही है और अपने खेल रहे थे। तो ऐसे ही खेलते हुए गिरिराज के तलहटी में आए हैं और वहां से श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि अचानक पुरवैया हवा बह गई इधर से पूरब के तरफ से, और गिरिराज जी के तरफ हवा तालवन से होते हुए टकरा कर तालवन से हवा गई। और बच्चों की ये दूसरी लीला है, कार्तिक में जो प्रारंभ हुआ गोचारण उस समय की नहीं, इसी अध्याय में अब इस आषाढ़ की लीला कहते हैं। ग्रीष्म के बाद आषाढ़ में ताल फल फलता है, तो ताल वृक्ष के अंदर फल होता है और जो बरसात के दिनों में आषाढ़ सावन में पकने लगता है, तो उस फल का गंध जब बच्चों को मिला नाक में तो आपस में कहने लगी कैसा गंध आ रहा है। तो अनुभव करते हुए कुछ लोगों को तो पहले से पता था, कृष्ण प्रथम बार वृंदावन में गए थे ना, और सयाने गोप थे जो पहले से गाय चलाते थे, उनको पता था। तो यहाँ से सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं, श्री दामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमणे दम ब्रुवन। एक बार राम कृष्ण के सखा अत्यंत घनिष्ठ मित्र श्री दामा सुबल स्तोक कृष्ण, एकदम निकट मित्रों का नाम रख रहे हैं ये लोग, प्रेम पूर्वक कृष्ण बलराम के पास जाकर कुछ बोले। प्रेमणे प्रेमणे द अब्रुवन, प्रेमणा इदम अब्रुवन, प्रेम के साथ बोले। ऐसा नहीं कि कोई फोर्स कर रहे हैं, एकदम स्वाभाविक बोल रहे हैं, बड़ी याचना पूर्वक प्रेम से कह रहे हैं, किसी व्यक्तिगत इच्छा का बोझ नहीं कृष्ण बलराम पर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनका मन नहीं है तब तक जबरदस्ती कुछ कह दिया जाए, प्रेम से कह रहे हैं। ग्वाल बाल की इच्छा थी कि कृष्ण बलराम समर्थ हैं, ये लोग दुष्टों का संहार कर सकते हैं, और अभी ताल वन में एक दुष्ट है धेनुक जो गधे के रूप में रहता है और उस पर कब्जा किया है, सारे पेड़ों पर कब्जा कर लिया है, फल पर कब्जा किया है। तो उनके मन में आया कि उन मधुर फलों को खाया जाए, तब कहते हैं आकर, बड़े हैं बलराम जी इसलिए संबोधन करते हैं, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवारण इतो अविदुरे सुमहद बनम तालाली संकुलम। कहते हे राम, हे महाबाहु, हे कृष्ण, हे दुष्टों का संहार करने वाले, यहां से बिल्कुल निकट अविदुरे, अविदुरे कहते हैं बिल्कुल निकट, जबकि अस्ति ताल बनम नामम धेनुका सुर रक्षितम मथुरा पश्चिमे भागे अदुराद एक योजना। कहते हैं यह ताल वन मथुरा के पश्चिम में एक जोजन 8 मील दूर ताल वन है, जिसका रक्षा जिसको कब्जा धेनुकासुर किया है। कई पुराणों में अलग अलग वर्णन है, तो बराह पुराण में कहा गया अस्ति गोवर्धनम नामम क्षेत्रम परम दुर्लभम, गोवर्धन के निकट मथुरा पश्चिमे भागे और दुरा योजना द्वयम, दो योजन दूर गोवर्धन से पूरब और मथुरा से पश्चिम वो ताल बन है, वहां धेनुक रहता है। तो वही कह रहे हैं अब विदुरे, चार कोस एक योजन बहुत दूर नहीं है, और वहां पर बहुत सुंदर वन है जहां ताल वृक्ष से युक्त है, बहुत से ताल वृक्ष वहां है। तो कृष्ण बलराम सुनने लगे, ध्यान से सुन रहे हैं, ने फलानी तत् भूरिणी, बहुत फल लगा हुआ है। तो मानो भगवान कहते हैं कि ठीक है फल लगा है तो जाओ खाओ, क्या तोड़ने में कठिनाई है, ऊपर है। कहते नहीं, पतंती पतिता नीचा, गिरता रहता है पक पक कर अषाढ़ में, सावन में फल अपने आप गिरता है, कुछ गिरा भी है और कुछ गिर रहा है। संति किंतु अवरुद्धानी धेनुके न दुरात्मना, मानो भगवान कहे कि जब फल खाने की इच्छा है और वहां गिरा हुआ फल है, वो ऐसा नहीं कि गिर कर फट जाता है, ताल कठोर होता है ऊपर से, तो कहते हैं गिरा हुआ है स्वादिष्ट फल है तो जाकर खाइए, कहते हैं लेकिन खा नहीं सकते हैं, है फल उपलब्ध है वहां सब है, लेकिन वो अवरुद्धानी धेनुके न दुरात्मना, वहां दुष्ट धेनुकासुर के द्वारा वो कंट्रोल्ड है, उसके नियंत्रण में है, उसको नहीं खा सकते हम लोग। तो अच्छा, वहां धेनुक नाम का असुर है। बलराम जी बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, तो सो अति वीरजो असुरो राम हे कृष्ण खर रूप धृत, हे बलराम, वह अत्यंत शक्तिशाली बलवान असुर उस पर कब्जा किया है। बहुत ध्यान से सुन रहे थे भगवान। त तब कहते हैं अत्यंत बलवान असुर है, गधा का वेश बनाकर रहता है, खर रूप धृक गधे के रूप में रहता है लेकिन असुर है। कहते हैं असुर है तो मानो उत्साह में हो है कृष्ण बलराम की, चलो मार देते हैं। तो ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि अगर हम मान लीजिए कह दें अपने लोभ में और कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, तो स्नेह है, आत्मीयता है कृष्ण के प्रति, बलराम के प्रति, यह अभी पता है कि ये लोग बलवान हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ अनिष्ट हो गया तो कहते हैं आत्म तुलई बलई अन्य ज्ञात भी बहुभिवृत। कहते हैं वो अकेला नहीं है, अपने समान बलवान वाले बल वाले अनेक ज्ञातियों से युक्त है, उसके परिवार के लोग भी वैसे ही बलवान है, उसके भाई पुत्र सभी बलवान है, अनेक मित्र उनके साथ है और सभी गधे के रूप में रहते हैं। तो साफ साफ बतला देना चाहिए, ऐसा नहीं कि फल के लोभ में कुछ रिस्की काम कर दें और वहां जाने के बाद खतरा हो जाए। तो कहते हैं देखिए इतना भयंकर है कि तस्मात् कृतं नराहारात् भीतै निर्भिरमित्रहन न सेव्यते पशुगणै पक्षी संगै विवर्जितम्। धेनुकासुर इतना कंट्रोल किया है कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी भले जा सकते हैं वहां उस वन में, उनको नहीं। दो अर्थ किया गया है, पक्षी संगै विवर्जितम् का अर्थ है पक्षियों को छोड़कर कोई भी मनुष्य या पशु वहां नहीं जा सकता, मतलब वहां का घास ऐसे ही पड़ा है, कोई चरने वाले पशु नहीं जाते भय के मारे, और न कोई मनुष्य जाता है वहां के, लकड़ी भी किसी काम में नहीं आता, वो मनुष्यों को खा जाता है, क्यों नहीं जाते हैं। तो कहते हैं कि तस्मात् कृतं नर आहारात्, वो मनुष्यों का ही भोजन करता है। हम लोग तो फल के लोभ में कह दिए, कहीं गए और कृष्ण बलराम को पकड़ कर खा जाए तो पहले से बतला दिए एकदम क्लियर कि आप लोग सब कुछ जान बुझ कर जो करना है कीजिए। वो मनुष्यों का आहार करता है, इस भय से भीतई निर्भी, भय के मारे कोई भी मनुष्य वहां नहीं जाता। लेकिन अमित्रहन शत्रुओं का वध करने वाले हे बलराम हे कृष्ण न सेव्यते पशुगणै, पशु भी नहीं जाते हैं, पशुओं को खा जाता है, सब जंगल में पड़ा हुआ है। पक्षी संगै विवर्जितम्, केवल आकाश में उड़ने वाले पक्षी को छोड़कर कोई नहीं जाता। और एक अर्थ यह भी कहते हैं कि यहां तक कि पक्षी भी उसके डर से उस क्षेत्र में नहीं उड़ते, कोई नहीं जाता है, मनुष्य भी नहीं, पशु भी नहीं, पक्षी भी नहीं। तो आप जैसा समझें, तो ग्वाल बालों ने भगवान की शक्ति का आनंदमय चिंतन कर रहे हैं। देख कृष्ण पहले ही बकासुर का वध कर चुके हैं, अघासुर का वध कर चुके हैं, कृष्ण के बल को जानते हैं। तो पता नहीं वो गधा के रूप में है, अस्पृश्य है, उसको छुएंगे कि नहीं, लेकिन वो असुर है। ग्वाल बाल चाहते थे कि कृष्ण और बलराम असुरों का वध करें, उनके मन में है, लेकिन डरते भी थे। जहां आत्मीयता होता है वहां बहुत ज्यादा भय होता है, वहां बल की सामर्थ्य का अंदाज ही नहीं होता। कोई भी स्नेहवान पिता या माँ अपने बच्चे के बल पर भरोसा नहीं करती, उनके मन में होता है पता नहीं कहीं अनिष्ट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कितना हो पढ़ा लिखा विद्वान लड़का है लेकिन माँ को भी भरोसा नहीं रहता है, वो यही सोचती है पता नहीं वो कुछ भूल कर देगा। तो कह रहे हैं स्नेह के कारण विद्यन्ते अभुक्त पुरवाणी फलानी सुरभिणी च ऐसा वही सुरभि गंधो। बात कर रहे हैं तब तक विसूचियो नो अवगृहते, कह रहे हैं उसी में कहते हुए कहते हैं अचानक पुरवैया हवा बह गया। यहाँ श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि बात कर रहे थे तब तक हवा बही और उसमें गंध आया, तो कहते नाक से सूंघते हुए कहते ऐसा वही सुरभि गंधो। देखिए जो आपको गंध आ रहा है ना, यह वही का गंध है। देखिए विद्यते अभुक्त पुरवाणी, जो फल गिरा हुआ है जिसको कभी ने किसी ने नहीं खाया है, खूब सुगंधित पका हुआ आम हो। एक छोटा बालक मुझे याद है, साथ में कुछ बाजार में जा रहे थे, तब तक फल के दुकान पर गंध पका हुआ आम का आ गया। आम है तो सब देख रहे हैं, आम कहाँ है, आम तो सामने नहीं दिख रहा था। अब दूसरा फल सेब, देख सेब लोगे ना, केला ना, ना, ना आम, आम कहाँ है। तो पूछा गया आम कहाँ है, कहाँ टोकरी में नीचे रखा हुआ है। तो उसको गंध मिल गया, कहता गंध आ रहा है। तो वैसे ही तो ठीक है। अब यहाँ कह रहे ऐसा वही सुरभि गंध हो विशो चुनो गृहते। देखिए यह वही सुगंध है जो सर्वत्र फैली हुई है, अनुभव हो रही है ना, आप भी अनुभव कर सकते हैं, आ रहा है गंध ना। तो कृष्ण बलराम भी सिर हिलाते हैं, हाँ यह गंध आ रहा है। तो कहते हैं कि यह वही का गंध है, यह हवा पुरवैया बहा और उसमें गंध आ गया पका हुआ ताल। तो प्रयक्ष तानी न कृष्ण गंध लोभित चेत सम वाक्षास्ति महती रामक गम्यता में यदि रोचते। गंध तो भले आ रहा है लेकिन देखिए कितना सुंदर बात कह रहे हैं। प्रियक्ष तानी न कृष्ण गंध लोभित चेत सम, हे कृष्ण आप फल हमारे लिए ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, सुगंध का अनुभव तो हो ही गया। हे बलराम हमारी इच्छा भी है, लेकिन केवल हमारी इच्छा प्रधान नहीं है। राम गम्यता में यदि रोचते, आप लोगों को अच्छा लगे तब चलिए, अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो हम अपने लिए नहीं कहेंगे, अपने लिए हम नहीं कहेंगे। गम्यता चला जाए यदि रोचते, यदि आप लोगों को आपको अच्छा लगे तब चलिए। से हम लोग चाहते हैं लेकिन हमारे चाह की कोई महत्व नहीं है, आप चाहे तो वहां चला जाए। तब भगवान हंसने लगे दोनों कृष्ण बलराम। एवं सुहित बच सुत्वा सुहित प्रिय चिकित्सया प्रहस्य जगमतु गोपई ब्रीतो ताल बनम प्रभु। तो भगवान अपने सुहृदों की बात सुनकर, अपने मित्रों की बात सुनकर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। अब बलराम जी ज्यादा उत्सुक थे, ठीक है चलो। तो भगवान पीछे से अपने सखाओं से कह रहे हैं देखिए कितना उत्साह है गधा को मारने में। इसके पहले कितने असुर आए कोई उत्साह नहीं दिखाए, प्रथम बार धेनुकासुर का वध बलराम जी के द्वारा हो, तो बड़े उत्साह में है बलराम जी। तो भगवान हंस रहे हैं। तो और प्रहस्य जगमतु गोपई वृतो, गोप बच्चों से घिरे हुए भगवान हंस रहे हैं। ताल बनम प्रभु सर्व समर्थ, प्रभु दोनों के लिए है, कृष्ण बलराम दोनों वहां के लिए चल दिए। तो यहाँ तात्पर्य में लिखा गया है कि भगवान सोच रहे हैं कृष्ण कि भला गधा को मारने में इनको कितना उत्साह है, भला गधा इतना विचित्र कैसे हो सकता है, इतना बलवान कैसे हो सकता है। कि इन ग्वाल बालों के अनुनय विनय पर भगवान को हंसी आ गई। और भगवान की हंसी की विशेषता आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान के हंसी में ही सारा दुख समाप्त हो जाता है। भगवान कपिल देव कहते हैं तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय में, हासम हरे रवनता खिललोक तीव्र शोका सुसागर विशोषण मत्युदारम। भगवान की उदार हंसी से संसार का दुख समाप्त हो जाता है, संसार का दुख समाप्त हो जाता है। गोपियां माँ जसोदा के पास उलाहना लेकर जाती हैं तो कहती हैं कि मैया यह असमय में बछड़ों को खोल देता है, गाय दोहने का टाइम नहीं होता तभी खोल देता है, ये करता है वो करता है। तो माँ जसोदा कहती है कि तो तुम बारती क्यों नहीं हो, डांटना चाहिए ना, पकड़ कर एक तमाचा लगाना चाहिए। तो कहती है मैया क्या बताएं, जो ही हम लोग क्रोध करती हैं, इसको क्रोध करके दौड़ती हैं, इतना सुंदर हंसता है कि हम देखते रह जाते हैं, इसके हंसी से ही हमारा सारा क्रोध समाप्त हो जाता है। तो हासम हरे रवनता अखिल लोक तीव्र शोका सुसागर विशोषण मत्युदारम। इनके उदार हंसी से, भगवान की हंसी अत्यंत उदार है, उनके हंसी के सामने सारा शोक सारा दुख समाप्त हो जाता है। तो बेचारे गोप सखा इतने दुखी थे उस असुर से, तो भगवान हंसे, सामने हंस करके कहे चलो चलो अभी अभी चलते हैं, तो उनके हंसी से दुख समाप्त हो गया। तो बलम प्रविश्य बाहुभ्याम तालान संपरिकंपयन फलानी पातया मास मतंगज यौजसा। जब ही भगवान बलराम प्रविष्ट किए, प्रवेश करते ही धेनु को चुनौती देने के लिए एक वृक्ष को पकड़े और जोर से हिला दिए, और हिलाते ही सारा फल गिर पड़ा तुरंत, और बहुत जोर से आवाज हुआ, फलना फलानम पततम शब्द निशम्या सुरदा सभा अभ्यधावत क्षितितलम सनगम परिकंपयन। जब ही पेड़ हिलाए इतना तेज, बहुत जोर से आवाज हुआ और फल गिरने का आवाज हुआ, बड़ा बड़ा फल ताल का लगा गिरने, तो उसको सुन करके धेनुक दौड़ा, बहुत तेज दौड़ा, और उसके दौड़ने का वर्णन है कि जब वह पृथ्वी तल पर दौड़ रहा था, अभ्य धावन क्षिति तलम पृथ्वी पर दौड़ रहा था, सनगम परिकंपयन पहाड़ के साथ पृथ्वी हिलती थी, पूरा भूकंप आ गया जब वो दौड़ा, तो एकदम पृथ्वी में भूकंप आ गया। समित्य तरसा पत्य प्रत्यक द्वाभ्याम पद्भ्याम बलम बली निहत्यो अरसी का शब्दम मुंचन परिसरत खला। आया और दौड़ कर पीछे का दो पैर एक में जोड़कर श्री बलराम के छाती पर जमकर मारा। भगवान बलराम सबसे आगे थे, कृष्ण को पीछे किए थे, जान गए कि बहुत से असुर हैं, तो आगे भगवान बलराम थे, तो उनके छाती पर खींचकर दो पैर, गधे जब मारते हैं दुलत्ती, दोनों पैर एक में जोड़कर भगवान बलराम के छाती पर मारा जमकर, कठोर पैर लगा, लेकिन एक डेग भी टस से मस नहीं हुए, ज्यों के त्यों खड़ा रह गए। तो वह बलशाली असुर झपटा और छाती पर अपना दुलत्ती मारा, और इसके बाद रेखता हुआ, आवाज करता हुआ भागा कुछ दूर। पुनरा साध्य संग्रब्ध उपक्रोष्टा पराकृष्ठित चरणा अपरौ राजन बलाद प्राक्षिपदुषा। तो बलराम जी के छाती पर दुलत्ती मारा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, लेकिन महाराज परीक्षित को अच्छा नहीं लगा, सामने सुनकर कहे मार दिया, और वो देखते रह गए, तो हाँ मार दिया दुलत्ती। और जब दुलत्ती मारा और देखता हुआ आगे गया, तो बलराम जी चुपचाप वहीं खड़े हैं, भाग नहीं रहे हैं, तो फिर उसको क्रोध आ गया, फिर क्रोध आ गया, तो क्रोध होकर वह फिर बलराम जी की ओर बढ़ा। तो महाराज परीक्षित का तो होश उड़ गया, दोबारा मारेगा क्या? तो कहते हैं अरे सुनिए सुनिए, संबोधन कहते हैं चरण व परो राजन, हे राजन सुनिए, अधीर मत हुई, अभी कथा सुनिए ध्यान से, आप अधीर मत हुई, इसलिए बीच में संबोधन कर दिए, हे राजन बलाद प्राक्षिपदुषा। फिर बलराम जी की तरफ क्रोध में भर कर चरण दुलत्ती चलाया, चला दिया, कहते हैं कि हाँ चलाया, लेकिन सुनिए क्या हुआ। सतम गृहत्वा प्रपदो ब्राह्म कई एक पाणिना चिछे पत्रिण राजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवित। जे वही दोनों पैरों को जोड़ करके मारना चाह दूसरे बार, ते वही बलराम जी बाएं हाथ से ही दोनों पैर पकड़ लिए, छाती पर नहीं लगा। सुनिए कथा, आप कह रहे हैं कि सतम गृहत्वा प्रपदो ब्राह्म इत्वैक पाणिना, एक ही हाथ मतलब बाएं हाथ से पकड़ लिए उसके दोनों पैर को, और पकड़ करके उसको उठा लिए, पूरा विशाल असुर गधे के रूप में था, उसको उठा करके और घुमा करके एक ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिए। तो कह रहे हैं कि फेंकने के समय नहीं, जब ही उठाए और उठा करके घुमाना चालू किए, उसी समय उसका प्राण पखेर उड़ गया। भगवान बलराम बाएं हाथ से पकड़े और पकड़ करके एक हाथ से पकड़ करके घुमाने लगे, घुमाते समय ही उसका प्राण निकल चुका था। अतः चीछे पर फेंक दिए तृणराज, तृणराजाग्रह। तृणराज कहते हैं जो पौधों का राजा है, बड़ा पेड़। तृणराज माने घास, तृण माने घास, लेकिन तृणराज का मतलब ताल वृक्ष, बड़ा पेड़। उसके ऊपर फेंक दिए और ब्राह्मण त्यक्त जीवितम, घुमाते समय ही वो मर चुका था। तो तेना हतो महातालो बेप मानो बृहत छिरा पाश्वस्थम कंपयन भग्न सचान्यम सोपिचा परम। तो अब देखिए, ऐसे जोर से फेंके और फेंकने के बाद बलराम जी के उसका, बलराम जी इतना रन बनाकर फेंके कि एक पेड़ पर गिरा और वह पेड़ बहुत बड़ा था, वो दूसरे पेड़ को गिराया, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। ऐसा जोर से केवल एक असुर को फेंकने से सारे ताल वन में झंझावात आ गया, पूरा आंधी आ गई और सारे पेड़ गिर गए, सब टूटने लगे, एक दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर, तीसरा चौथे पर टूट टूट कर गिर रहे थे। इतना भारी जोर लगाकर फेंके। बलस्य लीलया लीलयो सृष्ट खर देह हता हता ताला ताला संकंपिरे सर्वे महावाते रितायव। भगवान बलराम के द्वारा उस असुर के फेंकने से भगवान बहुत परिश्रम नहीं किए। यहाँ कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की वो तो उनकी लीला है, लीला माने खेल, केवल एक किस्म का खेल खेले। और उतना में ही प्रबल वायु, ऐसा आंधी आ गया, इतना भारी तूफान आ गया कि सारा ताल वन एकदम परिकंपित हो गया, सब एक दूसरे उड़ने लगा, लगा कि पेड़ टूट ही नहीं रहा है, टूट टूट कर उड़ रहा है, झंझावात आ गया। सुखदेव गोस्वामी आश्चर्य में हो गए, अभी डर रहे थे कि फिर दोबारा दुलत्ती मारेगा, जब सुने तो कहे अच्छा, चकित हो गए। तब कहते नैत चित्रम भगवती हियनन्ते जगदीश्वरे, बीच में फिर सिद्धांत बोलने लगे, ओत प्रोतम मिदम जस्मिन तंतु स्वंग यथा पट। अब नैतत चित्रम भगवती, भगवान की लीला है, इसमें आश्चर्य मत कीजिए, यह आश्चर्यजनक जो लीला है भगवान की है, और भगवान कहकर भी संतोष नहीं कर रहे सुखदेव गोस्वामी। ते अनंते अनंत शक्तिशाली बलराम की कथा कह रहा हूं, जिनके शक्ति का कोई अंदाज नहीं, असीम क्षमता जिनमें है। जगदीश्वरे जो संपूर्ण जगत को कंट्रोल करते हैं, ओतप्रोतम इदम विश्वम सारा संसार जो दिख रहा है, जस्मिन तंतु स्वंगा जथा पटा, यह संसार ही बलराम जी का द्वारा सृष्ट है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे तंतुसु छोटे छोटे धागे से बड़ा बड़ा कपड़ा बन जाता है, धागा रुई से धागा बनता है और धागा से वस्त्र तैयार हो जाता है, वैसे भगवान बलराम से ही सारा ये जगत बना है। वही महाशंकरषण, उनके अंश कारणोदक शाही, गर्भोदक शाही, क्षीरोदक शाही, ब्रह्मा आदि, सारा जगत सबके आदि कारण श्री बलराम की लीला है। इसमें क्या आश्चर्य है, उनके फूंक से सारा ब्रह्मांड उड़ने लगेगा, वो तो हाथ लगाकर मारे हैं, इसमें आंधी तूफान आ गया तो क्या आश्चर्य है, ये सारा जगत उनका ब्रह्मांड ही उनका खेल है। ततः कृष्णम च रामम चम ज्ञातयो धनुकस्य क्रोष्टारो अभ्यद्रवण सर्वे सनब्धा हत बांधवा। अब जब धेनुक मारा गया तो उसके जितने दोस्त मित्र सगे संबंधित थे सब दौड़े कृष्ण बलराम के तरफ, और तानस्तान पनत कृष्ण रामश्चर लिपली लया, एक को कृष्ण एक को बलराम, दोनों पकड़ पकड़ कर बस वही लीला घुमा घुमा कर मारने लगे। गृहित पश्चात चरणन प्राहिणो तो तीर्ण राजसु, उठा उठा कर फेंकने लगे, जो आते थे उनका टांग पकड़ लेते थे। उनको मारने का एक ही तरीका है, पैर चलाएंगे उसको पकड़ लेते थे। तो इससे सारा पेड़ टूट कर गिर पड़ा पड़ा और सारा ताल बन गधे के शरीर से और ताल के फल से एकदम ढक गया। फल प्रकार संकीर्ण देह दैत देह गता सुभि, मरे हुए गधों के शरीर से, और राजा भू सतालाग्रही घने रिवर नभस्तल। देखिए सुखदेव गोस्वामी को अच्छा लग रहा है, करें बहुत अच्छा ताल बन लग रहा था। राजा भूत सतालग्रही, यहाँ ताल बन की पृथ्वी बहुत अच्छा लग रही थी, घनैरिव नभस्थल, जैसे आकाश में बारिश के मौसम में पानी से भरा हुआ जैसे आकाश अच्छा लगता है बादल से युक्त, वैसे काले काले धेनुक असुरों के गधों के शरीर से और ताल के फल से वो ताल बन बहुत अच्छा लग रहा था। तयोस्तत सुमहत कर्म निशम्य विबुधा दया मुमुचु पुष्प वर्षाणी चक्रु वाद्यानि तुष्ट। जब धन धेनुक मारा गया तो इनके महत कर्म को सुनकर देखकर देवता लोग पुष्पों की वर्षा किए। बहुत बड़े असुर मारे गए तो पुष्पों की वर्षा हुई, फूल की वर्षा किए देवता लोग और स्तुति किए। कि इस प्रकार सनातन गोस्वामी इस पट्टिका लिखते हैं कि देवता ऋषि मुनि जितने बड़े लोग थे भगवान बलराम के बल पर बहुत आनंद आया, बड़ी खुशी हुई और सब देखकर चकित थे कि ये लोग खेल रहे हैं, खेल खेल में असुर मारे गए। अथ ताल फलान ताल फलानी अन्यत मनुष्यागत साधु साथ तीर्णम च पशु चेरु हत धेनु कानने। तो जिसमें धेनुकासुर रहता था वह पशु और मनुष्यों के लिए भी विवर्जित हो गया था, नहीं जा सकते थे, अब सबके लिए फ्री हो गया, वो जंग वन जनरल हो गया, कोई भी जा सकता है। सब जाकर उसमें निर्भय निडर होकर घूमने लगे और फल खाने लगे। अब गांव को भी वहां स्वतंत्रता पूर्वक घास चरने की सुविधा हो गई। तीर्णम च पशु चेरु हत धेनुक कानने। धेनुक मारा गया तो अब पशु भी जा सकते थे, मनुष्य भी जा सकते थे, अब कोई भय नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जिस वन में धेनुक सुर मारा गया वहां वे लोग स्वतंत्रता पूर्वक निडर होकर फल खाने लगे, किंतु आचार्यों का कहना है कि वो जो सखा लोग थे वे लोग नहीं खाए, वे फल खाने की जो इच्छा कर रहे थे वो अब नहीं खा रहे हैं। तो उसके कई कारण है, एक तो कारण है कि वहां लाश पड़ा हुआ है वो भी गधों का, और गधों के लाश में वो फल है तो अब नहीं इच्छा हो रही खाने का। तो वहां के लोग जो वन में रहने वाले पुलिंद आदि जो जंगली लोग हैं वो आकर खाते होंगे, किंतु कृष्ण के ग्वाल बालों ने उन्हें खाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो गधों के रक्त से सना हुआ था, मरे हुए थे गधे, वहां लाश पड़ा हुआ था, इसलिए वे लोग नहीं खाए। उस समय तो नहीं खाए लेकिन धेनुक का वध हो गया इसकी खुशी है। तो अब वृंदावन से नंदगांव के लिए लौट रहे हैं। अब एक दूसरा प्रसंग चालू, अब धेनुकासुर का वध हो गया, इसके बाद भगवान कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तुय मानो अनुगई गोपई सागतो ब्रजमा ब्रज। सुखदेव गोस्वामी जब भगवान कृष्ण बलराम नंदगांव से वृंदावन आ रहे थे तो वृंदावन से बोल रहे थे कि वृंदावन में आ रहे हैं, क्योंकि इधर से देख रहे थे, और जब जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि अब सागजो ब्रजमा ब्रज, अब अपने भाई अग्रज बलराम के साथ श्री कृष्ण ब्रज में आ रहे हैं, अब नंदगांव में खड़ा होकर देख रहे हैं। उस समय सुबह जब आ रहे थे तब लिख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि वो आ रहे हैं वृंदावन में, वृंदावन वासियों के साथ खड़ा होकर स्वागत कर रहे हैं, मन से उनका मन वृंदावन में है, कृष्ण बलराम को देख रहे हैं, और जब लौट रहे हैं तब नंदगांव की तरफ, कहते हैं अब ब्रज में आ रहे हैं। तो ब्रज में आने की दूसरी लीला है, बहुत सुंदर प्रसंग है। तो यहाँ तक रहा दसम स्कंद के 15वें अध्याय में ताल वन में धेनुक के वध की लीला, जो मैं बहुत जल्दी जल्दी कोशिश किया पूरा करने का। तो ये है यहाँ की लीला। तो इस तरह से वृंदावन ब्रजमंडल भगवान की लीलाओं से भरा हुआ है, प्रत्येक भूमि भगवान के उन मधुर लीलाओं की स्मृति कराती है। आप लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के लीला भूमि में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ के उन रज का स्पर्श कर रहे हैं जिसको भगवान नग्न पैरों से घूम घूम कर पवित्र बनाया है। वास्तव में भागवत में कहा गया है कि सबसे पवित्रतम स्थान है ब्रजमंडल, अहो अलम पुण्यतम मधुर बनम, सबसे पुण्यतम, अहो अलम श्लाघतम जदोकुलम, अहो अलम पुण्यतम मधुर बनम, जदेश पुंसा ऋषभ श्रियापति स्वजन्मना चंक्रमणे न चांचति। जो हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान के गुणों का वर्णन करती है तो कहती है सबसे जसस्वी इस संसार में अगर कोई वंश है तो वो है जदकुल, और सबसे पवित्रतम, सबसे पुण्यतम, सबसे श्रेष्ठ कोई स्थान है तो वो है मधुबन, मधुबनम ब्रजमंडल, क्योंकि जन्म लेकर इस कुल को सबसे श्लाघनीय, सबसे जसस्वी बना दिए, और जहां घूम घूम कर चंक्रमण करके पैदल बिना जूता चप्पल के घूम घूम कर ब्रजमंडल को पवित्रतम बना दिए। जिनके चरणों का केवल धोवन गंगा इतना पवित्र है, वही चरण जिन राज्य में पड़ा है, केवल एक रूप में नहीं, एक साल तक तो अनेक गोप सखा के रूप में और अनेक बछड़ों के रूप में भगवान संपूर्ण ब्रज में चले हैं। इसलिए यह परम पवित्र स्थान है और आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उस रज से स्पर्श प्राप्त हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप लोगों का ज्यादा समय ले लिया। जय श्री राधे, जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण।